તારીખ 27/3/1991ના દિવસે પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા પાવાપુરીમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 1.
પ્રશ્ન તો બહુ અલગ અલગ છે. મેં એક હું શુદ્ધ હું વેદ કસાય સભી વિકલ્પો મેં ભી દુઃખ લગના ચાહી એસા હૈ ના આદિ કસાય મેં એક હું શુદ્ધ હું આદિ ભેદ કસાય
ભેદ કા મેને કિસકા પ્રશ્ન હૈ એસા હૈ સુબહ જો બાત આઈ થી ના કે જો વિકલ્પ ઉઠતે હૈ અપને સ્વરૂપ કે બારે મેં मैं एक हूँ शुद्ध हूँ ये मन कसाय भक्ति है. उसमें जो वो मन कसाय है अपन को अच्छा सा लगता है मन कसाय में, परंतु आपने कहा था उसमें भी अपन को दुख लगना चाहिए. तो सब वो दुख को तभी लगेगा ना जब सच्चे सुख का पता लगेगा, और सच्चा सुख तब तक ये पता लगेगा तब तक है कसाई स्वरूप का अपने पर ध्यान ना आए, तो वो दुख कैसे लगेगा.
कि परिणाम में तो राग रूप विकल्प है और ज्ञान भी है. जब हम राग को ज्ञान के साथ मिलाएंगे तो ज्ञान में कसाय नहीं होने से दुख नहीं है, और राग में कसाय होने से दुख है. दोनों अनुभव में आता है अपने पर्याय. तो एक में दुख है एक में दुख नहीं है, ऐसे इससे पता चलता है. जैसे एक कागज भी सफेद है, कपड़ा भी सफेद है, लेकिन जब मिलान करेंगे तब पता चलेगा कि दो में से कौन से मैला है. वैसे मंद कसाय में मलिनता उतना अंतर अवलोकन अपने भावों का हुए सूक्ष्म तौर से तभी तो पता चलता है, इसके पहले पता नहीं चलता है. और ज्ञान को भी वहां मध्यस्थ होना पड़ता है कि हमें जो है उसे जानना है, कुछ पूर्वग्रह पूर्वक नहीं जानना है. जैसे राग में दुख है, लेकिन कुछ प्रकार किस प्रकार कुछ कुछ ऐसे प्रकार के राग हैं जिसके विषय में हमारा पूर्वग्रह ही है कि ये अच्छा है सुख वाला है. तो ये पूर्वग्रह के कारण सही बात नजर नहीं आती. जैसे हम आदमी को किसी को समझ लेंगे कि ये अच्छा नहीं है तो हम उसी दृष्टि से देखेंगे उसको, ये अच्छा है तो उसी दृष्टि से देखेंगे. ऐसे हमने कुछ राग को ऐसा पूर्व से ग्रहित कर लिया है अभिप्राय में कि ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है. तो इसी कारण से ये पूर्वग्रह युक्त जो दृष्टि है वो सही बात को नजर नहीं आने देती. इसलिए हमें मध्यस्थ हो जाना है कि जो भाव जैसे हैं वैसे हमें देखने हैं, न इससे कमी वैसी कोई हमारे नज़र में बात नहीं होनी चाहिए, इस तरह से देखने की हमारी पद्धति होनी चाहिए। तो इस पद्धति से जो है से वो दिखें, क्योंकि योगिक ज्ञान में तो फोटो पड़ता है, प्रतिबिंब आता है, तो जैसा है वैसा ही आएगा, तो आकुलता आकुलता रूपी मालूम पड़ेगी। तो ये भेद ज्ञान के काल में ऐसा भाषित होता है। एक स्टेज तो ये भेद ज्ञान का है, एक स्टेज और भी है, वो ऐसा है कि किसी पात्र जीव को, पात्रता वाले को वैसे ही कहीं सुहाता नहीं है, ऐसा ही लग रहा है कि कहीं भी सभी प्रकार के राग द्वेष मोह आदि जितने भी परिणाम हैं, जितने भी विभाव है, उसमें नैसर्गिक रूप से उनको दुख 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 ऐसा होता रहता है। उसका कारण कोई वैसी ही इनकी परिस्थिति भीतर में ऐसी है कि वो दुख से छूटने का उसको तीव्र भाव हुआ है कि हमें दुख से छूटना चाहिए जैसे कैसे भी। तो उस पात्रता में आते हुए उनको जितने भी विभाव परिणाम है उसमें दुख दुख लगने लगते हैं, भले ही सुख का सुख महसूस नहीं किया हो, जरूरी भी नहीं है, लेकिन दुख तो इतना स्थूल है और स्वभाव से ही अपने से विरुद्ध है, इसलिए ऐसा होता है। जैसे हम ये भी कहते हैं व्यवहार में कि कोई आदमी परिणाम बिगाड़ता है, जैसे चोरी करता है, या कोई ऐसे भाव अच्छे नहीं होते हैं तो उसका जो कॉन्शियस बाइट करता है, क्या कहते हैं हम, उसकी जो आत्मा है उसका निषेध करता है सहज रूप से। मैंने ऐसा क्यों होता है, निर्दोषता पवित्रता तो देखी नहीं। जैसे किसी का चोरी का धंधा है, तुम लोग हमेशा वो चोरी करता है, जैसे सोनी लोग है, किसका भी सोना आएगा थोड़ा तो चोरी करेगा करेगा करेगा, भाई का हो या माँ का सोना आया तो भी चोरी कर लेगा, क्योंकि उनका तो धंधा ही वही है, तो वो ये सब तो अवश्य करेगा कि ये अच्छा नहीं है। तो अच्छा क्या है उसका कोई परिज्ञान, कोई शास्त्र नहीं पढ़ाया उन्होंने, ये तो एक संसार का सामान्य प्राणी है, फिर भी उसको ऐसा क्यों होता है कि भीतर में आत्मा स्वभाव से ही निर्दोष है, इसलिए दोष की प्रतिकार शक्ति है वो स्वतः काम करती है। जैसे शरीर के विज्ञान में, तभी भी विज्ञान में क्या होता है, रोग होता है शरीर को, तो शरीर में रोग होते ही उसका प्रतिकार करने वाले भी एक परिस्थिति पैदा होती है जिसको रेजिस्टेंस पावर हम कहते हैं। तो ये शरीर की तंदुरुस्ती, ये इनका स्वभाव है, तो तंदुरुस्ती के खिलाफ कुछ गड़बड़ी हुई, विकृति हुई, तो ये रेजिस्टेंस पावर है, ये स्वतः काम करने लगेगा। जैसे ठंडी हो रही है तो हमारा शरीर बदन गर्म रहेगा, हम थर्मामीटर लगाएं तो बाहर में जिस डिग्री की ठंडी है शरीर में उस डिग्री की ठंडी नहीं मिलेगी, नॉर्मल पॉइंट में रहेगा शरीर, तो नॉर्मल हीट क्यों रहती है, तो शरीर में उतना पावर है वो गर्म ही रहेगी, तो उसको ठंडा नहीं होने के लिए गर्मी को कुछ और प्रकाशित होना पड़ता है, तो ये इस गर्मी से हमारी हजम शक्ति बढ़ जाती है, तो हम कहते हैं कि भाई ठंड के दिनों में हजम शक्ति ठीक रहती है, डॉक्टरों की जो ये सीजन है वो ऑफ सीजन हो जाती है, क्योंकि हजम शक्ति बढ़ती है तो शरीर अच्छा रहता है, तंदुरुस्त रहता है, रोग नहीं आ सकता है। और गर्मी होते ही हमारे पसीना चालू होता है, बदन ठंडा रहता है, बाहर की गर्मी के साथ मेल नहीं खाता, नॉर्मल पॉइंट ही रहता है, 98.4 K क्यों? वो नेचुरली काम करते हैं, नेचर अपने आप काम करती है, वस्तु का ये स्वभाव है। वैसे आत्मा जो है उस स्वरूप से, स्वभाव से शुद्ध है, निर्दोष है, इसलिए अवस्था में दोष होते ही उसका निषेध होना ये अच्छा नहीं है, ऐसा सभी आत्मा को लगता है। करना पड़ता है, चोर को चोरी करना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है। अगर उसको कोई दूसरी आमदनी का स्रोत हो जाए तो नहीं करेगा। तो वैसे जिसको छूटना है, कल्याण करना है, संसार के दुखों से छूटना है, ऐसी भावना में जो आया है, उसको मंद कषाय वाले दोष भी दुखदायक महसूस होंगे। ये योग्यता में, पात्रता में ऐसा संभवित है, बनता है। बाद में सुख उगड़ता है, जो स्वभाव सुख मिलता है वो तो बाद में मिलता है, लेकिन पहले हटने के लिए, जहाँ खड़े हैं वहाँ हटने के लिए कोई परिस्थिति तो होनी ही चाहिए। अगर हटने की परिस्थिति नहीं बनी वहाँ तक, तो इसमें रस है हमारा, दुख भाव में, दोष भाव में हमारा रस है, तो वहाँ से हम हट नहीं सकते। रस आता है तो छोड़ेंगे नहीं, निरस हो जाएंगे तो छूटना आसान हो जाएगा। करण लब्धि और सम्यक दर्शन का स्पष्टीकरण करें। करण लब्धि के परिणाम इतने सूक्ष्म है कि जो छद्मस्थ को बुद्धि ग्राह्य नहीं होता, इतने सूक्ष्म परिणाम है ये। तो जिसको करण लब्धि के परिणाम होते हैं उसको इस वक्त मालूम नहीं पड़ता कि ये करण लब्धि का परिणाम है। और सम्यक दर्शन के का परिणाम तो इतना तीव्र आनंदमय होता है, अपूर्व आनंदमय होता है, तो वो मालूम पड़ता है, इसका अनुभव मालूम पड़ता है, इसका अनुभव मालूम नहीं पड़ता। दूसरा कि करण लब्धि के परिणाम हो या सम्यक दर्शन के परिणाम हो, लक्ष्य है वो परिणाम पर उस वक्त नहीं होता। जब ऐसे परिणाम होते हैं तब लक्ष्य है वो त्रिकाली ध्रुव पर होता है, इसलिए ये परिणाम स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं और उस पर लक्ष्य नहीं रहता। इस हालत में ये परिणाम होते हैं। समयसार गाथा 270 में मैं परद्रव्य को जानता हूं इसे अध्यवसान कहा। सो परद्रव्य को आत्मपने जानना अध्यवसान है या उन्हें बिना आत्मबुद्धि किए जानना भी अध्यवसान है? यदि नहीं तो परद्रव्य में कर्तृत्व, भोक्तृत्व और अहम बुद्धि को ही अध्यवसान कहना चाहिए, जानने चाहिए, कहना चाहिए। जानने को अध्यवसान क्यों कहा, खुलासा कीजिए। मैं वास्तव में परद्रव्य को जानता ही नहीं हूँ, उसे जानना मानना मिथ्यात्व है, अध्यवसान है। क्या ऐसा इसका अर्थ करना उचित है? ठीक है, ऐसे कि शास्त्र में दो प्रकार के संकर दोष बताए हैं। समय सार की गाथा 30, 31, 32, ये गया एक संकर दोष और भाव्य भावक संकर दोष। तो ये कर्तृत्व भोक्तृत्व वाला जो दोष है वो भाव्य भावक संकर दोष में आता है। और किसी भी ज्ञेय को जानते हुए ज्ञेय से ज्ञान का भिन्न अनुभव नहीं रहा तो ये ज्ञायक संकर दोष अवश्य वहां उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परदृढ़ को जानना ये दोष नहीं है, फिर भी जानने के काल में एकत्व होना ये अवश्य दोष है। क्या होता है कि परदृढ़ को जानने के काल में मिथ्या दृष्टि जीव को इस ज्ञेय का अवलंबन हो जाता है। एकत्व होना परदृढ़ में, परद्रव्य का अवलंबन लेना और उपयोग को पर सन्मुख करना, ये तीनों ज्ञान का दोष है। फिर से परद्रव्य को जानने के काल में ज्ञान का भिन्न अनुभव नहीं रहना, मैंने एकत्व बुद्धि से ज्ञान जानना, ये मिथ्यात्व के काल में होता है। और उसी काल में परद्रव्य का अवलंबन ज्ञान देता है, अवलंबन पूर्व जानता है, ये भी ज्ञान का दोष है, विभाग है। और ज्ञान पर सन्मुख होवे और जाने और स्वसन्मुखता अपनी सन्मुखता को छोड़े, स्वयं की सन्मुखता को छोड़ दे, ये भी ज्ञान का दोष है। इस प्रकार के तीन प्रकार के ज्ञान के विभाव है। फिर भी ज्ञान में विभाव होने पर भी अपनी स्वच्छता का त्याग ज्ञान नहीं करता, और विभाव होने पर भी जैसे चारित्र गुण में विभाव होते कषाय होती है, ऐसे ज्ञान में कषाय नहीं होती। इतना दोष दोष में दोनों गुणों के परिणमन में अंतर है। अब अपने प्रश्न को ले में कि अध्यवसान तो आत्म ने जानना, आत्मबुद्धि से जानना, यही अध्यवसाय अवश्य है। एकत्व कहो आत्मबुद्धि कहो दोनों एक बात है। मैं वास्तव में, अब दूसरा प्रश्न करें, परद्रव्य को जानता ही नहीं, उसे जानना मानना मिथ्यात्व है, अध्यवसान है, क्या इसका अर्थ ऐसा करना उचित है? नहीं, ऐसा अर्थ घटन नहीं करना चाहिए। परद्रव्य का ज्ञान में प्रतिबिंब आ जावे और इस कारण से ज्ञान में अशुद्धि होती है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। अगर ऐसी बात हम स्वीकार करें कि परद्रव्य का ज्ञान में प्रतिबिंब होने से अशुद्धि आती है, तो सबसे ज्यादा शुद्धि सर्वज्ञ केवली को हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसलिए स्वच्छत्व शक्ति के कारण प्रतिबिंब तो आना ये स्वाभाविक है, लेकिन प्रतिबिंब आते वक्त हमें किसका अवलंबन है, किसके साथ हमारा ज्ञान एकत्व करता है, इस पर दोष निर्दोषता आधारित है। इस ढंग से उसको उसका मूल्यांकन करना चाहिए। मैंने मैं परद्रव्य को जानता ही नहीं हूँ, जानना मिथ्यात्व है, सो बात नहीं है, ऐसा जानने से मिथ्यात्व होता है, ऐसा माने वो मिथ्यात्व है क्या? परद्रव्य का ज्ञान होने से मिथ्यात्व होता है ऐसा मानना मिथ्यात्व है। ये बात करष्टिका में बार बार कही है पंडित राजमल जी ने, ये बात बार बार कही उन्होंने। बाईस नंबर का कलश की टीका करते हुए वो कहते हैं, भावार्थ इस प्रकार है कि जीव द्रव्य ज्ञान स्वरूप है, समस्त ज्ञेय को जानना उसका स्वभाव है। जानते हुए जो अपना ज्ञान मात्र स्वरूप था वैसा ही है। ज्ञेय को जानते हुए विकार कुछ नहीं है, ऐसा वस्तु का स्वरूप जिनको नहीं भासित होते हैं होता है वे मिथ्या दृष्टि है। क्या कहा फिर से, ये को जानते हुए विकार कुछ नहीं है ऐसा वस्तु का स्वरूप है, ऐसा वस्तु का स्वरूप जिनको नहीं भासित होता है वे मिथ्या दृष्टि है। बहुत स्पष्ट बात है ये बात, उन्होंने और भी अनेक जगह पर लिखी है। ऐसा है कि मिथ्यात्व अवस्था में पर को जानने के काल में एकत्व हो ही जाता है, तो हम एकत्व को रोके या पर को जानने को रोके, क्या करना है हमें? पर को जानने को हम रोक ही नहीं सकते, ज्ञान को ये हो ही नहीं सकता। एकत्व को हम बंद कर सकते हैं, अगर एकत्व को बंद कर दिया पर ना जान, पर को जानने से कोई विकार होने वाला नहीं है। लेकिन जो पर का जानना बंद हो ही नहीं सकता उसको हम बंद करना चाहें, ये हमारा अनुचित प्रयास है, उचित प्रयास नहीं है। भूल तो एकत्व को होने में होती है, इस भूल को तो हम स्पर्श नहीं करें, और भूल जहां जानने में होती नहीं है वहां हम छोड़ने को, भूल तोड़ने को प्रयास करें। तो चेहरे पे दाग है, हम घिसते हैं दर्पण को, कैसे दाग जाएगा? ये तो ऐसी बात होगी कि दर्पण को साफ करें हमारा मुंह का दाग निकल जाएगा, ये कैसे बनेगा? दृष्टांत रूप से बताइए। दिक्कत तो बुद्धि है, कैसे है कि जैसे सड़क पर कोई जाता है, लेकिन जाता है ऐसा देखने के काल में मेरा जानने वाला मेरा भाव इससे भिन्न है, ऐसा कोई अनुभव रहा क्या? नहीं रहा ना, तो नहीं रहा तो एकत्व हो गया। एकत्व तब जो नहीं होता जब भिन्नत्व होता है, तब अब भिन्नत्व तो हुआ ही नहीं तो एकत्व हो ही गया, दो में से एक तो होने वाला है, तीसरा तो कोई ना, वो एकत्व रूप से होता है क्योंकि तीसरी परिस्थिति संभव नहीं है, तीसरी परिस्थिति कोई संभव ही नहीं है। या तो ये परिस्थिति हो या तो वो परिस्थिति हो, दो में से एक तो होगी ही होगी, तीसरी तो हो ही नहीं सकती। मैंने शुद्धोपयोग के काल में, अच्छा जो शुद्धोपयोग से बाहर निकले जब तो विचार और बात कर सकते, बात करेगा। शुद्धोपयोग में तो बात करने का कोई मौका नहीं है, न कोई विचार करने का। अब जो मनुष्य शुद्धोपयोग से बाहर निकला उसको हम पूछें कि आपने स्वरूप का अनुभव किया, तो बोलेगा हाँ शुद्धोपयोग में हमने हमारा स्वरूप का अनुभव किया। तो हम ये भी और पूछेंगे, क्या आपने केवल अपना स्वरूप का अनुभव किया, तो हाँ बोलेंगे कि मैं अपने केवल अपना स्वरूप का अनुभव किया। दूसरा किसी का अनुभव नहीं किया, तो कि नहीं किया। तो दूसरे का अनुभव नहीं किया, ये ज्ञान कहाँ से आया? मेरे स्वरूप में सिर्फ मेरा स्वरूप का ही अस्तित्व है और दूसरा का नहीं है, ऐसा अनेकांतिक ज्ञान वहां ही होता है। ऐसा अनेकांतिक ज्ञान का प्रारंभ स्वानुभव से ही चालू होता है, इसके पहले तो होता ही नहीं, हुआ ही नहीं किसी को। मैंने पर को नहीं जाना था, मेरे स्वानुभव के काल में मैंने पर को नहीं जाना था, ये कैसे जाना? क्योंकि स्व की अपेक्षा पर से ही होती है, स्व और पर परस्पर सापेक्ष है। स्व में पर का ज्ञान गर्भित है, पर को पर कहने में स्व का ज्ञान गर्भित होता ही है, इसके बिना स्व कर स्व पर की अपेक्षा लागू ही नहीं होती। स्व की स्थापना में पर की स्थापना हो ही जाती है, पर की स्थापना में स्व की स्थापना हो ही जाती है। ये लुप्तता क्या है, किसे कहते हैं? ज्ञान के दर्पण रूप पर्याय में जो प्रतिबिंब गेय का ऊषा है, उस वक्त ज्ञान का ज्ञान रस अनुभव में नहीं लेकर के गेय के आश्रय में गेय के प्रति लक्ष्य होकर के गेय का रस आ जाता है, इसको गेय लुप्तता कहते हैं। गेय संबंधित रस उत्पन्न होना, ये गेय लुप्तता है। ज्ञान में तो ज्ञान रस आना चाहिए। गुरुदेव फरमाते थे कि आत्मा ज्ञान रस का कंद है, आनंद रस का कंद है। तो ज्ञान में तो ज्ञान रस है, लेकिन हम कल्पना से नेह को रस से आविर्भूत करते हैं, उसको गेय लुप्तता कहते हैं। तो ज्ञान रस हमें अनुभव में नहीं रहता, ये गेय लुप्तता है। सूतक पातक का स्पष्टीकरण करिएगा। मैं तो इस प्रकरण को नहीं जानता हूँ कि सूतक पातक क्या चीज है, मेरा अभ्यास इस विषय का नहीं, माफ कीजिएगा। और अपने को कुछ आत्महित के प्रयोजन की बात करने में समय भी कम है, तो ऐसे अप्रयोजनभूत विषय में हमें नहीं उलझना चाहिए। पंच परावर्तन का स्पष्टीकरण करें, द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव, इस नामक पंच परावर्तन है। द्रव्य मैंने परमाणु, क्षेत्र मैंने 14 ब्रह्मांड का क्षेत्र, काल मैंने विभिन्न प्रकार की वैभाविक अवस्थाएं, और भाव मैंने ऐसे जो अनेक प्रकार के उद्गल परमाणु के आस्वाद हैं, पर भाव मैंने सभी प्रकार के चारों गतियों के भाव है। चारों गतियों में भी स्थूल कथन है, जैसे देवलोक में सर्वार्थ सिद्धि का भाव है वो पंच परावर्तन में समाविष्ट नहीं होता, क्योंकि परिभ्रमण करने वाले जीव ने पंच परावर्तन अंत में देखने भी है। तीर्थंकर प्रकृति के भाव है, उसमें भी अनंत बार ये बात नहीं हो सकती, बात नहीं हो सकती, एक ही बार हो सकती है। तो उतनी अपेक्षा रख करके बाकी के जो मिथ्यात् अवस्था में जो भी भव और भाव होते हैं, द्रव्य प्रकाश मिलते हैं, वे अनंत बार हमारे जीव कर चुका है, और जहाँ तक इससे छूटने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा, वहाँ तक ये परिभ्रमण चालू रहने वाला है। मिथ्यात्व के गर्भ में ये शक्ति पड़ी है, तो इसे हमें इसका निवारण करना है। हमारे दुर्भाग्य से कुछ गुरुदेव एवं कुछ माताजी जैसे सत्पुरुषों का चीर वियोग हो गया है। वर्तमान में उपलब्ध परमात्म एवं गुरुदेव, परमागम एवं गुरुदेव के प्रवचनों आदि, वर्तमान में उपलब्ध परमागम एवं गुरुदेव के प्रवचनों आदि अकेले हैं। हमारी कार्य सिद्धि आत्मानुभूति होने वाली नहीं है, ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? यदि कोई सत्पुरुष आपकी जानकारी में हो तो कृपया सूचित करें, क्योंकि वर्तमान में भारतवर्ष में सभी वक्ताओं में से सत्पुरुष के प्रति भक्ति भक्ति चर प्रवचन आपका ही शुभ है, अक्षर मिलते नहीं, भक्ति भरा ऐसा लिखा है,
भक्ति भरा प्रवचन आपका ही सुना है, प्रश्न आपका ही सुना है,
सुना है, कृपया हमारी सहायता करें, अपना हमारे ऊपर उपकार अनंत उपकार होता है। देखिए बात तो ऐसी है, इस महापुरुष तो चले गए दोनों, फिर भी हमारी भावना तो चालू रहनी चाहिए। इनके वियोग से हमारी भावना का वियोग हो, ये बात तो ठीक नहीं है। अगर ऐसा होता हो तो संयोग में हमारा प्रेम सही नहीं था, क्यों कि जब संयोग में प्रेम होता है तो वियोग में प्रेम दोगुना होता है। अगर वियोग में प्रेम दोगुना होता है तो उसका संयोग मिलता है और फिर ये चार गुना हो जाता है। प्रेम, सच्चा प्रेम जिसको कहें, निस्वार्थ प्रेम जिसको कहें, जिसमें बदले की आशा न हो उसका तो ऐसा ही स्वभाव है, बढ़ने का, वर्धमान होने का इसका स्वभाव है। जब ये चले गए तो हमारी भावना चली गई तो हमारा प्रेम सच्चा नहीं था। तो पूछने वाले को अगर ये भावना है तो उसके भावना को वो वृद्धिगत करते रहे, तो इस भावना के कारण से इनके ज्ञान में इस प्रकार की सूझ आ जाएगी। अगर कोई सत्पुरुष होगा तो उसको पहचान कर लेगा। अगर हमारी इतनी सूझ नहीं है तो मेरे कहने से या दूसरे के कहने से क्या फायदा। ये कोई किसके किसी के कहने से मानने की चीज थोड़ी है क्या? ये कोई किसी के कहने से मानने की चीज नहीं है। ऐसे तो बहुत लोग आपको मिलेंगे जो ऐसे कहेंगे कि मुझे आत्मज्ञान हुआ है, मुझे अनुभव हो गया है, मुझे सम्यक दर्शन है, आपको लिस्ट चाहिए तो दे दूंगा। ऐसे बहुत है कहेंगे, हमें है, हमारे पास है। तो मैं कहूँ अपने लिए या कोई कहे अपने लिए या दूसरा दूसरे के लिए कहे, ये चीज ऐसी तो नहीं है कि इस तरह से स्वीकार करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कल ये बात चली थी कि सत्पुरुष की पहचान करने में एक पक्ष तो अपनी योग्यता का होता है। जहां तक अपनी योग्यता नहीं हो वहां तक सत्पुरुष बगल में विराजमान होगा, अपने को पता नहीं चलेगा। अगर हमारी सूझबूझ होगी तो 1000 मील पर जो है हमारा पत्ता लगने वाला है वहां पर। ये बात ऐसी है, तो इसलिए ये कोई सहायता की परिस्थिति मामला नहीं है। ये तो अपनी भावना से अपने ज्ञान को अपनी योग्यता को ठीक करने का विषय है। तो अपनी भावना हमेशा सफल होती है। जैसे कि मानो इधर कोई सत्पुरुष नहीं है, हम माने और फिर भी हमारी भावना तो चालू रही क्योंकि हमारी भावना तो सच्ची है, तो क्या होगा कि हमारे आयु पूर्ण होते हमारा नया क्षेत्रांतर जो है उसी जगह होगा जहाँ सत्पुरुष होगा। ऐसा ही बनेगा कब के जब हमारी भावना होगी तब। तो भावना चालू रखने में वर्तमान में भी फायदा है, भविष्य में भी। हम भावना को नहीं छोड़े, यही हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य को हम करें, फल की आशा मत धरे, बस ये सीधी सादी बात।
भाई लिखा है निद्रा में थाक लगता है, जबकि जगत में आता है कि निद्रा लेने से थकान मिटती है, ये उल्टी बात समझ में नहीं बैठी।
उन्होंने ये भी कहा है पत्र में कि निद्रा में थकान किसको शांत होती है या मिटती है, कि जिसको बहुत विकल्प होता हो उसको। जो बहुत विकल्प से थके हुए हैं, विकल्प में बहुत आकुलता से जो थके हुए हैं, उनको निद्रा के कारण में विकल्प शांत हो जाते हैं, इसलिए उसकी थाक जो है मिटती है। लेकिन उनको तो इतने विकल्प नहीं थे, इसलिए इस परिस्थिति में वो स्वयं तो नहीं थे। अच्छा, ये बात तो सामान्य तौर से सभी मनुष्यों की जो होती है इसलिए। लेकिन निद्रा में भी थकान लगती है, ये बात एक आध्यात्मिक परिस्थिति की है, उसमें गहराई ज्यादा है। जैसे कि हमको खाने पीने में संतुष्टता यानी तृप्ति होती है, तृषा लगती है पानी पीते हैं, भूख लगती है हम खाते हैं, उनको तृप्ति लगती है। तो ये सामान्य तौर से संसार में ऐसा ही बनता है, ऐसा ही निंदा की बात है। लेकिन ज्ञानियों में भी जिसकी अध्यात्म की तीव्रता परिणति में होती है, उनकी परिस्थिति कुछ दूसरी होती है, मैंने अलौकिक होती है। तो उसको ऐसा लगता है कि ये खाना पीना यही हमारे लिए एक आकुलता का प्रसंग है, तृप्ति होने का प्रसंग नहीं है। हम हमारे आनंद रस को पिए और हमारे अनुभव की खुराक को खाएं, तभी हमें तृप्ति होती है, ऐसा कहते हैं ज्ञानी। तो उसकी तृप्ति की कोई और बात है, अलौकिक बात है। जैसे कुछ भैंसे के विषय में सुना है कि खाने के वक्त उसको जब कहा जाता था कि आपका खाने का वक्त हुआ है, हम परोसते हैं, क्या चालू करें परोसना, तो उनको अच्छा नहीं लगता। बस सुबह शाम होता है और आपका खाने का बाजा बजने लगता है। मैं बाजा बजता है तो अच्छा नहीं लगता है, जिसको धुम 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 होता है तो माथा खराब होता है ना। ऐसे बोले कि बस दोनों टाइम खाने का खा रहा हूं, खाने के लिए बाजा बजाते हैं आप लोग। तो मैंने खाने में रस नहीं आता है, यानी निरसता इतनी रहती है कि क्या बस खाने का समय हो गया, क्या बस खाना पड़ेगा, क्या हमें खाना पड़ेगा, ऐसा लगता है। ऐसा ही सोने में होता है कि अपने स्वरूप के आलंबन से, आश्रय से हमें आराम है। इस आराम धाम को छोड़ करके निंद्रा में हमें आराम कैसे मिल सकता है। इस प्रकार के एक आध्यात्मिक परिणाम में से निकली हुई ये बात है कि आराम के धाम को छोड़ करके आराम कैसा निंद्रा में भी, और स्वरूप के रसास्वादन को छोड़ करके दूसरे रसों में तृप्ति कैसी, मिल ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। इसी प्रकार के कोई अलौकिक परिणामों में से ऐसी चीजें निकलती है जो उन्होंने सहज रूप से व्यक्त किए हैं अपने वचनों में।
सम्यक दृष्टि के लिए मित्र दो भेद हुए
जी।
सम्यक दृष्टि के लिए तो बात दूसरी हो गई कि निद्रा में थकान लगेगी, और जो मिथ्या दृष्टि है उनको आराम मिलेगा, इसका मतलब ये हो गया।
हाँ, उसको आराम की कल्पना बनती है। अगर आराम मिलता है तो वो सोता ही रहे, उठता क्यों है, फिर वो कहेगा कि ये सोते सोते लेटते लेटते मैं थक गया, अब तो मुझे बैठना है, बैठने में आराम है, तो बैठता रहे। फिर क्यों उठता है, तो कहने अब तो बैठने में थक गया मैं, अभी मुझे चलना पड़ेगा। फिर थोड़ा चला तो फिर कहेगा मैं थक गया, अब तो मुझे बैठना पड़ेगा, फिर लेटना पड़ेगा। यही इनकी परिस्थिति है, कहाँ ठिकाना है इसका, कोई ठिकाना नहीं है। कल्पना बनती है, वास्तविकता आ जाती है, कल्पना छूट जाती है। ये कल्पना आराम की, सुख की होती है, और वास्तविकता तो वास्तविकता रहती है, कल्पना को छूटना पड़ता है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। हम बहुत सुनते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं, परंतु उपयोग आत्मा में रुकता नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि सुनने और समझने के बावजूद भी हमने अपने आत्मा को पहचाना नहीं। अगर हमें सही पहचान हो जाए तो जो अनंत महिमावंत प्रभु है उसमें उपयोग को रोकना नहीं पड़ेगा, उपयोग उसमें थम्ब जाएगा, स्तंभित हो जाएगा। बाहर ही कोई आश्चर्यकारक पदार्थ दिखने में मिलता है तो उपयोग ऐसे रथ यात्रा निकलती है, बाजे बजते हैं तो दिखने में कितना रस आता है, तो वैसे ही उपयोग लग जाता है, रुकता है कि नहीं रुकता है। तो अद्भुत से अद्भुत, अद्भुतात अद्भुतम, अमृतचंद्राचार्य ने क्या कहा, अद्भुतात अद्भुतम, अद्भुत से अद्भुत, ऐसा आश्चर्य से भी आश्चर्यकारी जो स्वरूप है, ऐसा स्वरूप को पहचानते ही उपयोग को एक खिंचाव होता है, नैसर्गिक रूप से एक खिंचाव उसमें उसको थम्भित कर देता है। ऐसे उपयोग होता है, रोकने से, इच्छा से कोई रुकने वाला नहीं है। इसके लिए तो सही पहचान चाहिए। परम सत्संग, सत्संग, असत्संग और कुसंग का प्रकरण मुमुक्षु के लिए परम प्रयोजनभूत है। फिर भी हमें इस संबंध में स्पष्टता नहीं होने से इस महत्व के विषय में भूल होने संभवित है, अतः इन चारों के स्वरूप का स्पष्टीकरण करें। परम सत्संग, महापुरुष का, ज्ञानी पुरुष का, श्री गुरु का संग को परम सत्संग कहते हैं। कब? कि हम रुचि से, प्रीति से, अपने हित की भावना से इसके चरण में जाकर बैठे तब, ये शर्त है। अगर हमारी रुचि, भक्ति, प्रीति नहीं है और कोई मामूली भाषण करने वाले को हम सुनते, वैसे उनको भी सुनते रहे, तो हमारे में सत्संग का भाव ही नहीं होने से हमारा संग ये सत्संग नहीं है। तो ज्ञानी पुरुष के, सत्पुरुष के चरण के इच्छुक जो होता है, ये पात्रता की मुख्य निशानी है, मुख्य लक्षण है। जो सत्पुरुष के चरण का इच्छुक, श्रीमद जी के 105 नंबर का पत्र है, महावीर के उपदेश का पात्र कौन, मैंने सम्यक दर्शन के अधिकारी कौन, इस प्रश्न का उत्तर है उन्होंने दिया है। उसमें 10 बातें बताई हुई है, उसमें पहली और पहला नंबर की जो बात है वो यह है के सत्पुरुष के शरण का इच्छुक जो होता है वही भगवान के उपदेश का पात्र है या सम्यक दर्शन का पात्र है। तो इस तरह से जो सत्संग करता है उसको परम सत्संग कहते हैं। ऐसा सत्संग उपलब्ध नहीं हो तो जब जिसी को, जिसको अपना, जिस मनुष्य ने, जिस मुमुक्षु ने अपना ध्येय बदल डाला, जिसके, जिसको अपने जीवन में सिर्फ आत्मकल्याण ही करना है, पूर्णता को ही प्राप्त करने का जिसका ध्येय है, दूसरा किसी आशा वांछा से जो धर्म के क्षेत्र में नहीं है, जो होते हैं तो कई लोग ऐसे नहीं, वैसे मुमुक्षुओं का उसी ध्येय से समागम करना ये सत्संग है। इसका मतलब ये हुआ कि एक मुमुक्षु को दूसरे मुमुक्षु को साथ संग करना है, संग करना है, तो हमें ये बात पूछ लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, या हमें साफ कर लेनी चाहिए कि आपका ध्येय तो ऐसा है कि नहीं है क्या, तब तो हम सत्संग करेंगे, वरना नामधारी मुमुक्षु से सत्संग करना योग्य नहीं है, क्योंकि सभी एक दर्जे के तो होते ही नहीं। इसलिए जिसका भी संग करना है, जिसके साथ प्रीति करना है धार्मिक कारण से, ये संसार का स्नेह नहीं है, ये धार्मिक स्नेह है, धर्म स्नेह है। तो धर्म स्नेह जिससे करना है उसकी योग्यता को अच्छी तरह समझे, फिर हम संग करें तो उसको सत्संग कह सकते हैं, वरना सत्संग नहीं है, असत्संग है या तो कुसंग भी है। जैसे कि कोई मुमुक्षु तो नामधारी होते हैं लेकिन ज्ञानियों का, सत्पुरुषों का विरोध भी करते हैं, अवर्णवाद भी करते हैं, भूल भी निकालते हैं, दोष भी देखते हैं और कहलाते हैं मुमुक्षु। तो ऐसे दोष दूषित परिणाम वाले जीवों का संग करना ये कुसंग है, असत्संग उसको नहीं कहेंगे, उसको कुसंग कहेंगे। और जो सांसारिक संग होता है, परिवार से, बाजार से, जाति से, ज्ञाति से, समाज से, ये होता है ना, रोटरी क्लब होता है, लायंस क्लब होता है, वैसे कई सामाजिक संस्थाएं हैं, या ये चैम्बर होते हैं व्यापारी के, तो इसमें हम अपना सभ्य पद ग्रहण करते हैं, कभी कभी तो पैसा भर के भी, और उसी प्रकार के हम इनके यहाँ जाते हैं, उसको हमारे यहाँ बुलाते हैं, खाना पीना, मौज मजाक करना, मनोरंजन करना, ये सब असत्संग है। कहाँ से लेकर के घर के परिवार से लेकर के ये सारी लाइन लग गई है जो संसार के प्राणियों के संग करने की, ये असत्संग है। असत्संग की रुचि और कुसंग की रुचि से बड़ा नुकसान तो यह है कि सतपुरुष की पहचान हो नहीं पाती, सतपुरुष मिलने पर भी, यही सबसे बड़ा नुकसान होता है। ऐसे ज्ञान की समझ की विपरीत परिस्थिति होती है। समय हुआ है, इस प्रकार रह गया साथी को। Thank you.